आप हैं SBS हिंदी के साथ।
दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी का असर आप जी रहे हैं, इस वक्त महसूस कर रहे हैं, दूर से पास से सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक ऐसा तबका है जो इस पूरे संकट के केंद्र में है और पूरा संकट उस तबके के, उस वर्ग के इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहा है और अक्सर वो तबका हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। वो हैं स्वास्थ्यकर्मी। ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त स्वास्थ्यकर्मी इस संकट के केंद्र में हैं, उनके ऊपर बोझ सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो ज़िंदगी किस तरह जी रहे हैं और वो इन चुनौतियों से कैसे सामना कर रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर दीपक राय हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ और वेस्टमिड अस्पताल के साथ। उनसे जानते हैं कि डॉक्टरों की ज़िंदगी, स्वास्थ्यकर्मियों की ज़िंदगी अब कैसी हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
थैंक यू। थैंक्स
डॉक्टर दीपक राय। ये बताइए कि इस संकट का असर डॉक्टर्स की, नर्सिस की और जो अस्पताल में या दूसरे स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उनकी जिंदगियों पर किस तरह हुआ है?
अच्छा सवाल है। असर तो खैर सभी के ऊपर हुआ है और हम लोग अलग नहीं है, लेकिन हम लोग फोर फ्रंट पे हैं तो ऑब्वियसली असर ज़्यादा हुआ है। और असर हर तरह का है, स्वास्थ्य पे, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, पारिवारिक भी शामिल है। तो असर हर तरफ पड़ा है। आप घर पे रहते हैं, इतना सा स्ट्रेस लेके आप घर पे आते हैं, आप चाहते हैं कि घर पे वो स्ट्रेस ट्रांसफ़र ना हो, वो सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं। आप काम पे जाते हो, वहाँ पे इतना स्ट्रेस होता है, एक छोटी छोटी सी गलती जो आपकी वो बहुत भारी पड़ सकती है। तो वो सारे ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड ज़्यादा है और साथ में एक फियर सा है अननोन का कि वर्कलोड बढ़ रहा है लेकिन किस लेवल तक बढ़ेगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा डर भी बना हुआ है। इन्फेक्शन का डर सबसे बड़ा है कि हम इन्फेक्शन ले लें, वहाँ तक ही नहीं, उसके बाद हम घर लेके भी आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ है लेकिन घर पे ये चीज़ें उतनी पॉसिबल नहीं होती, तो ये डर बना रहता है कि घर पे कहीं ना इन्फेक्शन फैल जाए। तो ये सारी चीज़ें, एक ऐसे लगेगा कि बहुत सी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होती हैं और उस स्ट्रेस से कैसे हमें कोप करना है वो सारी चीज़ें होती हैं। और कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी विभाग होता है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हम सभी को, चाहे हेल्थ डॉक्टर्स हों या सफाई कर्मचारी हों या जो भी हों, उनको एक लिमिटेशन के अंदर ही काम करना है, एक लिमिटेड सुविधा ही मिल सकती है क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं है। अब हम ये चाहें कि हर किसी को सब चीज़ें सुविधा दिला दें, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। और आज की डेट में जबकि पूरी दुनिया में हर चीज़ की मांग इतनी बढ़ी हुई है तो वो सारी सुविधाएं भी थोड़ी सी लिमिटेड हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस ओवरऑल एक मेंटल स्ट्रेस भी है और साथ में वर्क, काम हर आदमी का बढ़ गया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो डॉक्टर 8 घंटे काम करता था, अब उनको 12 घंटे की शिफ्ट पर डाल दिया गया है कि कुछ डॉक्टर स्पेयर रहें जो कि इमरजेंसी में काम कर सकें और एक्सपोजर डॉक्टर्स का कम हो। जैसे 24 घंटे के अंदर अगर 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो 2 डॉक्टर एक्सपोज होने होंगे, 8 घंटे की होती है तो 3 डॉक्टर एक्सपोज होंगे, तो 1 डॉक्टर 12 घंटे काम करेगा। ये सारी चीज़ें जो की गई हैं उसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेस भी है और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये सारा स्ट्रेस लेते हुए भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं।
तो इस स्ट्रेस के दौरान और इस पूरे क्राइसिस के दौरान क्या जनता का, पब्लिक का सहयोग पूरा मिल रहा है? क्या पब्लिक भी उस तरह बिहेव कर रही है जैसे होना चाहिए इस क्राइसिस में?
देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक पब्लिक हॉस्पिटल में कैसे बिहेव कर रही है या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कैसे बिहेव कर रही है, और एक पब्लिक हॉस्पिटल के बाहर आम उसमें कैसे बिहेव कर रही है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हॉस्पिटल में तो जैसे नॉर्मली पब्लिक बिहेव करती थी वैसे ही कर रही है, हाँ थोड़ा चेंज हुआ है, वो भी स्ट्रेस में है और कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि वो एग्रीवेट हो जाता है, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, डॉक्टर्स या जो भी सब हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है और वो थोड़ा जो भी डॉक्टर्स का या जो भी सफाई जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके मनोबल पर भी अच्छा असर नहीं डालता है। तो वो एक्सपेक्टेड है कि लोग थोड़ा, सबको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस है लेकिन थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करें। एक सिंपल थैंक यू भी एक हेल्थ कर्मचारी के लिए बहुत ही आगे तक जाता है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें और अच्छे से नॉर्मल जैसे पेश आते हैं वैसे पेश आएँ। स्ट्रेस सभी के साथ है, उनके साथ भी है, आपके साथ भी है। हालांकि ऐसा कुछ मेजर अभी हमें ऐसा नहीं देखने को मिला है कि हाँ डॉक्टर्स के अगेंस्ट में कुछ है या उनके फेवर में कुछ है, जैसे नॉर्मल बिहेवियर होता था वैसे ही है। थोड़ा सा डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, सभी के पास स्ट्रेस है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा टेस्ट हो जाए, लेकिन जो सर्टन क्राइटेरिया है वही हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे बस में नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन को हम चेक करके बता दें कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, वो उनके साथ भी है, हमारे साथ भी है। जैसा कि आपको बताया कि एक लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइंस है उसके थ्रू वो सारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा अभी भी हमें लगता है कि वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अभी तक जो ये मैसेज है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड क्लीनिंग और हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, वो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट हमें उसमें अभी बहुत सारा सुधार करना है। अभी भी दिखते हैं लोग अपना, उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ हमें नहीं होगी। वो चार पांच लोग अपना एक साथ चलते जा रहे हैं, आप बाहर निकलिए दिख जाते हैं, वो चीज़ें हमें थोड़ी और सुधारनी पड़ेगी। ये वायरस किसी को भी वो नहीं करेगा, डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि आप यंग हो या बुजुर्ग हो, लगेगा तो सभी को। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत यंग हो तो आपको लग जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप ये सोचो आप घर जाओगे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनको ट्रांसफ़र करोगे, क्या आप ये चाहते हो कि वो बीमार पड़े? नहीं। तो वो सारी चीज़ें, बहुत मैसेज अभी भी थोड़ा सा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है।
एक बात जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है वो ये है कि ये वायरस खासतौर पे इतना ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि दुनिया ने पहले भी बहुत सारे वायरसेस देखे हैं, स्वाइन फ्लू देखा, सार्स देखा, इबोला देखा, पर इस तरह कई किसी की सिचुएशन नहीं देखी है। तो इस वायरस में या इस संकट में ऐसा क्या है?
देखिए, एक जो चीज़ होती है अननोन, मैं इबोला और सार्स के थोड़ा पहले जाऊँगा, अराउंड 1916-1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था, उस समय वो बिल्कुल नया था और अननोन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक था। अकेले, मतलब जैसे इंडिया जैसे देश में 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ लोग मरे थे उसमें, बिकॉज वो नया था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा। ये भी एक काफ़ी कुछ ऐसा ही है, और बहुत ही कंटेजियस वायरस है और रिलेटिवली नया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, रोज़ इन्फॉर्मेशन बदल रही है। तो लोगों को जो लगता है कि आज ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो ये पक्की है, उस दिन के लिए वो पक्की है, कल के लिए हो सकता हो ना पक्की हो। तो ये जो अननोन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ अभी चीज़ें रोज़ चेंज हो रही हैं कि कितने परसेंट मॉर्टेलिटी है, कैसे फैलता है, ये सारी चीज़ें रोज़ चेंज हो रही हैं। तो ये जो अननोन है, और वैक्सीन का मेन चीज़ है कि प्रोटेक्शन, तो वैक्सीन ये नया वायरस है इसलिए इसके डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 महीने या 2 महीने में रेडी हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, इसके मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। और हालांकि बहुत सारे ट्रायल बिल्कुल वार फुटिंग पे चल रहे हैं, कि जिसमें कि अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता दवाओं का, जो कि ट्राई की जा रही हैं कि अगर इफेक्टिव हैं तो। और ये सारी चीज़ें अभी आपकी डेवलप हुई हैं लास्ट 2 से 3 महीने में, तो ये बहुत ही कम टाइम है कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए, चाहे मेडिसिन डेवलप करने के लिए, चाहे वैक्सीन डेवलप करने के लिए, चाहे ट्रीटमेंट गाइडलाइन डेवलप करने के लिए, वो सारी चीज़ें। और हर जगह ये डिफरेंट थोड़ा सा इसका वो है, वायरस का करेक्टर भी है, और डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ें अभी कंफर्म हो चुकी हैं और जो चीज़ें वेल नोन हैं, उसमें कंटेनमेंट, जिसमें आपको सोशल आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन या सोशल डिस्टेंसिंग, और क्लीनलीनेस टू स्टॉप द स्प्रेडिंग, जिसमें हैंड वॉशिंग, मास्क का भी देखा है बहुत लोग पहन रहे हैं, लेकिन मास्क बेसिकली उनके लिए हु आर at risk of getting the infection, like health workers, या who already have infection. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी बेसिक चीज़ें तो मालूम है हमें, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मालूम करना है, जैसे एग्जाम्पल मॉर्टेलिटी रेट ही, हर कंट्रीज की डिफरेंट आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें। सो मेन यही मैं कहूँगा कि जो अननोन है इसमें बहुत ज़्यादा है, नोन हमारे पास इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है, हालाँकि रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम है। तो अभी हालाँकि कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन मानिए समाज का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पूरी जो जिम्मेदारी है समाज की, भविष्य की, देश की, दुनिया की, वो आप डॉक्टरों के कंधों पर है, और इस जिम्मेदारी का हम लोगों को, हम जनता को बहुत एहसास है। तो इसलिए बाकी सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
इंटरप्ट करूँगा आपको, शुक्रिया के लिए अच्छा, लेकिन ये जिम्मेदारी केवल डॉक्टर्स के नहीं, सबके ऊपर है। अगर हम अपने प्रिकॉशन लेंगे तो वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जिम्मेदारी सबकी है और सब लोग बराबरी से निभाएं, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रह सकें।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक राय।
थैंक्स, थैंक यू।
Thank you.
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।